हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जोया अबीर सिंह राठौड़ को बहुत याद कर रही थी। आज अबीर उसके साथ क्लासेस में नहीं गया था और न ही लेक्चर देने आया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अबीर सिंह राठौड़ का एक्सीडेंट हो गया है, जोया की सांस थम सी गई। वो तेजी से दौड़ती हुई बाहर भागी। उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और गाड़ी में सवार होकर अस्पताल की ओर रवाना हो गई। जोया की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। उसे बार बार अबीर सिंह राठौड़ की चिंता सताने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस इंसान के लिए इतनी चिंता महसूस कर सकती है। जोया बस दुआ कर रही थी कि अबीर जहाँ भी हो वो ठीक हो, उसे कुछ न हुआ हो। जोया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है। वो जल्दी ही अस्पताल के सामने खड़ी थी। वो अंदर भागी और सीधा इमरजेंसी रूम में जाकर डॉक्टर से अबीर सिंह राठौड़ के बारे में पूछा। लेकिन अबीर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। जोया सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अबीर सिंह को किसी और अस्पताल में एडमिट कराया गया हो। जोया की हालत बदहवास सी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अबीर सिंह राठौड़ को कहाँ ढूंढे। वो इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकली ही थी कि एक डॉक्टर से टकरा गई। डॉक्टर की सारी फाइलें नीचे गिर गईं। जोया जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगी और सॉरी बोलने लगी। तब डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? जोया ने कहा, मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। जैसे ही जोया आगे बढ़ी, डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए मिसेज राठौड़, आप मिसेज अबीर सिंह राठौड़ है ना, मिस्टर अबीर सिंह राठौड़ की पत्नी? जोया ने हाँ में सिर हिलाया, जी हाँ। डॉक्टर ने कहा, मैडम आप फिक्र मत कीजिए, सर बिल्कुल ठीक है, वो इस वक्त अपने कमरे में है, हमने वहीं पर उनकी ड्रेसिंग कर दी है, आप जाइए और वहाँ उनसे मिल लीजिए। जोया ने ये सुनते ही डॉक्टर की ओर शुक्र भरी निगाहों से देखा और तेजी से दौड़ती हुई अबीर के कमरे में पहुँच गई। उसने देखा अबीर बेड के सिरहाने पर टेक लगाए बैठा हुआ था। उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। जोया ये देखकर बहुत डर गई और खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़ती हुई अबीर के गले लग गई और रोने लगी। क्या हुआ आपको, ये चोट कैसे लगी, और आपने मुझे बताया भी नहीं? क्या आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आपको कुछ हो जाता तो, जोया रोते हुए बोली। उसने अबीर के सीने पर दो तीन थप्पड़ भी जड़ दिए। जोया की बदहवास हालत देखकर अबीर घबरा गया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा। रिलैक्स रिलैक्स जोया रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जैसे ही अबीर ने जोया को थोड़ा शांत किया, जोया अपने बदहवासी हालात से बाहर आई। उसने देखा कि वो अबीर के सीने से चिपकी हुई थी। वो थोड़ी शर्मिंदा सी हुई और अबीर से थोड़ी दूरी बनाई। आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ आपको अबीर सर? अबीर कुछ देर जोया को देखता रहा। रोने की वजह से जोया की नाक लाल हो गई थी। इसे देखकर अबीर को जोया पर बहुत प्यार आने लगा, लेकिन वो अपने आप पर काबू रखे हुए बैठा रहा। वो एक्चुअली कल रात आपसे झगड़ा करने के बाद मैं गुस्से से गाड़ी लेकर निकल गया था, और जैसे ही एक दो किलोमीटर पहुंचा तो मेरा स्पीड पर कंट्रोल नहीं रहा और गाड़ी एक डंपर से टकरा गई। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस केवल थोड़ी सी बाजू में चोट आई है और थोड़े से टांग फ्रैक्चर हुए हैं, बट डॉक्टर ने कहा है मैं 3 से 4 दिन में ठीक हो जाऊंगा और चलने फिरने लगूंगा। अबीर ने अपने बड़े एक्सीडेंट को बहुत छोटा सा एक्सीडेंट बताकर जोया के सामने पेश कर दिया था। जोया हैरानी से अबीर की ओर देखने लगी और फिर गुस्से से बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको क्या जरूरत थी गुस्से से गाड़ी लेकर जाने की? आपको कुछ हो जाता तो, आप जानते भी हो मेरा और अरीबा का क्या होता? जोया भावुक हो गई थी। जोया की बात सुनकर अबीर मुस्कुराने लगा। अबीर को इस तरह मुस्कुराता हुआ देख जोया को एहसास हुआ कि वो क्या कह बैठी थी। वो नर्वस होकर अपने होठों को दांता से चबाने लगी। ये जोया की पुरानी आदत थी। अबीर जोया की कश्मकश समझ गया और उसे ज्यादा न सताते हुए बोला, आपकी क्लास कैसी रही आज? क्लास की बात सुनकर जोया ने राहत की सांस ली और टॉपिक बदलते हुए बताया कि उसकी क्लास कितनी बोरिंग थी और उसे कुछ समझ नहीं आया। तब अबीर ने कहा, ठीक है, आप परेशान मत हो, आपकी क्लास में यही कमरे में दूंगा, डोंट वरी, सारी चीजें अच्छी तरह से सिखा दूंगा। तब अबीर ने कहा, नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आज आप आराम कीजिए, जब आप ठीक हो जाएंगे आप मुझे तब समझा दीजिएगा। तब अबीर ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। ऐसा कहकर अबीर ने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और जोया को अपने पास बैठने के लिए कहा। मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्लास की डिटेल्स ऑन करने में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। जोया आलिया ने हाँ में सिर हिलाया और अबीर की बाजू में जाकर बैठ गई और अबीर के कहे अनुसार लैपटॉप ऑन करने लगी। जोया के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और वो बार बार उन्हें पीछे कर रही थी। अबीर बड़े ध्यान से जोया का हर मूवमेंट देख रहा था। जोया के इतने करीब बैठने की वजह से उसकी सांसें बढ़ने लगी थीं और उसे अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। एक तो उसकी हालत खराब थी, उसके हाथ और टांग दोनों में चोट लगी हुई थी। जल्दी ही अबीर ने जोया को सारी चीजें समझाना शुरू कर दिया, लेकिन बीच बीच में उसे खांसी आ रही थी। अबीर को खांसी आते ही जोया उसकी पीठ सहलाने लगती और उसे पानी पिलाती। जोया ने अबीर को दो तीन बार कहा कि वो रहने दे, वो कल उसे समझा दे, लेकिन वो नहीं माना। अबीर ने कहा कि वो उसकी पढ़ाई को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वो एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। बहुत दिनों से उसने इसी पल का इंतजार किया था कि जोया को कब वो अपने पैरों पर खड़ा करेगा और उसे इतना मजबूत बनाएगा कि लोग उसके सामने खड़े होने के बारे में 100 बार सोचेंगे। अबीर ने पूरे 2 घंटे तक जोया को सब कुछ समझा दिया और जोया बहुत अच्छी तरह से समझ गई। पर इस बीच अबीर को काफी दर्द होने लगा था। ज्यादा देर बैठने की वजह से उसकी कमर और हाथ में दर्द होने लगा। तब जोया ने अबीर की दवा उसे खिलाई और फिर उसकी पीठ पर डॉक्टर की दी हुई दवा लगाने लगी। हालांकि डॉक्टर ने एक नर्स को अबीर की देखभाल के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन अबीर ने उसे वहां से भेज दिया था। उसने कहा था कि वो अपने पति का ध्यान खुद रख लेगी। जोया बड़े प्यार से अबीर की पीठ पर दवा लगा रही थी। वो एक तरह का जेल था जिससे कमर दर्द कम किया जा सकता था। जोया को ऐसा लग रहा था मानो वो लोहे पर हाथ चला रही हो। अबीर की पीठ एकदम लोहे जैसी मजबूत थी, उसकी स्टेनलेस स्टील जैसी बॉडी थी। जोया के इस तरह छूने पर अबीर की हालत अजीब हो रही थी। जोया को अपनी इतनी फिक्र करता देख अबीर सिंह राठौड़ को बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश मेरा ये एक्सीडेंट पहले हो गया होता तो मुझे पता चल गया होता कि इस लड़की के पत्थर दिल का दूसरा हिस्सा नरम दिल भी है। अबीर बेड पर बैठा हुआ मुस्कुरा ही रहा था कि जोया की नज़र उस पर पड़ी और वो समझ गई कि अबीर क्यों मुस्कुरा रहा है। जोया उसके पास गई और बोली, मिस्टर राठौड़, आपको ज्यादा गलतफहमी का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका ध्यान सिर्फ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है और फिर आपको मुझे बिजनेस भी सिखाना है, इसीलिए मैं अपने गुरु यानी के टीचर की देखभाल कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और मुझे और अच्छी तरह से बिजनेस सिखा सकें, समझे आप? जोया कुछ और कह रही थी और उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। जोया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा अनोखा सा एहसास था। जोया की बात सुनकर अबीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस उसे देखे जा रहा था और बोला, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। ऐसा कहकर अबीर ने लेटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो लेटा उसके टांग और हाथ दोनों में दर्द होने लगा और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। अबीर की दर्द भरी आह सुनकर जोया बेचैन हो गई और जल्दी से उसके पास गई। उसने बहुत धीरे से अबीर की टांग पकड़ी और बहुत धीरे धीरे से बेड पर फैलाना शुरू कर दिया। अबीर को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जोया के उसकी जख्मी टांग पकड़ने के बाद वो जोया की ओर देखने लगा, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उसे अब अपना दर्द काफी हल्का लगने लगा। फिर जोया ने अबीर की प्लास्टर लगी बाजू को सहारा देकर अबीर को लिटाने की कोशिश की और उसके पीछे 2-3 बड़े तकिए लगा दिए ताकि अबीर को हर तरह से कंफर्टेबल लगे। और डॉक्टर के कहे अनुसार उसने अबीर के लिए खाना रेडी करवा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि 2 मेडिसिन्स जो काफी हाई लेवल की हैं वो बिना खाना खिलाए अबीर सिंह राठौड़ को नहीं देनी है, वरना उनके काफी नुकसान हो सकते हैं। जोया ने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी और जल्दी ही उसने अबीर के लिए मरीजों वाला सारा खाना बनवा दिया था। इनफैक्ट उसने खुद बनाया था।